आज के बाद जहां आपको दीन के रास्ते में कोई मुश्किल, चाहे सबसे बड़ी बस सुस्ती, नींद, दुनिया का फायदा, जॉब, बच्चे, घर, काम, मेहमान, जो भी है, उस वक्त इस आयत को याद करें कि ये अपोजिट द विंड्स है, ये अपोजिट जाऊंगी तो फायदा होगा, ज़ालिकल फौजुल अजीम, फिर ईमान की लज्जत मिलती है। और मैं कहती हूँ ईमान की टेस्ट के बगैर दुनिया से जाना ये तो महरूमी की बात है, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे और हर काम में पहले हों। फिर इसमें आप देखें साबिकुन अलवलुन, आपका ख़ानदान नहीं है ऐसा आप ख़ानदान में पहले बने, बल्कि एक एक बंदा अपने अपने ख़ानदान पे काम शुरू करे। क्यों बिदात है, क्यों बेदीनी है, क्यों हराम हलाल है, शादियाँ क्यों ऐसी होती हैं, ये क्यों ये नहीं हो रहा, ये बेटियों बेटों का फ़र्क क्यों ऐसा नहीं बन रहा, बात करें और यकीन करें अगर आपके अंदर इखलास है तो आपके रिश्तेदार आपसे माइंड नहीं करेंगे। जितना बंदा अपने रिश्तेदार को अच्छी बात समझा सकता है दूसरे को नहीं समझा सकता। अपनी मिसाल दे दे कि देखो मैं जो थी मुझे जो बात समझ आई है। ये जो आप कहते हैं नहीं हमारा ख़ानदान नहीं मानता, तो क्या नबी का ख़ानदान मानता था? क्या आपने 13 साल की कोशिश कर ली है? तो आप देखें कि जब हमारी फैमिली हमारे साथ मिल जाती है फिर तो नूर नला नूर, फिर खुशी और वो नेकी के अंदर जो काम होते हैं मैं कहती हूँ उससे इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। अल्लाह ताला बस काम करने वाला बनाए, और मैं कहती हूँ नया आज़म नया इरादा करके आज उठें कि अल्लाह अगले साल तक हमारे पास यहाँ 10 नए और प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हों और एक एक में खैर और बरकत डाल दें, और अल्लाह हमें मजबूत बुनियादों पे काम करने वाला बनाए जो हम चले जाएँ लेकिन वो काम कभी ना ख़त्म हो। इसके बाद देखिए साथ ही साथ वही बात है कि जहाँ सच्चे मोमिनों की बातें हैं तो वहाँ फिर मुनाफिकों के किस्से, एक और किस्म। अभी तक हमने कितनी पढ़ी हैं आपको याद है? 2 किस्में। अब एक तीसरी किस्म के मुनाफिकों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतारिफ कराया जा रहा है। आप कहेंगे क्या था, सारी मुनाफिकों की बातें इकट्ठी कर देता अल्लाह ताला और मोमिनों की अलग, तो फिर ये उतार चढ़ाव ईमान और जज्बात का कैसे आता है? जैसे अभी तायरा ने कहा कि मुनाफिकों की सुने तो लगता है वो भी हमारी बातें हैं, तो साबिकून की बातें सुने तो वो भी अपनी लगती हैं। तो ये लाइवली अंदाज होता है, कभी जोश कभी होश, कभी आगे कभी पीछे, क्योंकि जो साबिकून अलवलून होते हैं ना वो हक़ को सामने आते ही फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। हक़ उनके लिए कितनी कीमती चीज़ होती है कि उसको कबूल करने में ज़रा सी देर गवारा नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं करते, और ये बाहिम्मत लोग होते हैं। कबूल हक़ का फ़ैसला करते हैं तो नतायज नहीं देखते, प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते इसके बाद क्या होगा, और ये ख्याल तो वो दिल में लाना अपने लिए मायूब समझते हैं कि इसके बाद हमें छोड़ना क्या पड़ेगा। फिर भुगतेगा कि हाई जॉब छोड़ दी, खाएंगे कहाँ से, देखेंगे तब छोड़ेंगे फिर पता लग जाएगा। वो ये भी नहीं देखते कि सारे लोग इस रास्ते पे चल पड़े हों तो फिर हम चलेंगे, वो कहते कोई नहीं चल रहा हम चलेंगे, हम रास्ते बनाएंगे। वो किसी का इंतज़ार भी नहीं करते कि अकेले हैं, वो पुरखतरवादियों में कूद पड़ते हैं, वो सोचने पे वक्त ज़ाया नहीं करते, वो कबूल करते, मसलियतों वाले नहीं होते। और वही बात कह के आगे चलती हूँ कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा तमाशा लबे बाम अभी। ये होते हैं साबिकुन अलव्वलून, हर मौके पे वो अव्वल, जिधर नाम लिखाया अव्वल, जिधर बात हुई अव्वल, फिर उसके बाद दूसरे के दर्जे की बातें, फिर दूसरे जो हैं जो बिन के पीछे, वो भी ठीक है जन्नत तक चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन काम चलते जाएं। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और खूबी, कहते कि आपने लोगों के अंदर के खैर को भरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग कानों की तरह हैं, सोने चांदी लोहे की कानें होती हैं ना, इसी तरह इंसानों की भी कानें हैं। तो अल्लाह ताला अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो उसको ज़िंदगी में बाहर ले आए और हम अल्लाह के रास्ते में चलें, वरना क्या है आयत 101, वा मिम्मन हौलकुम मिनल अराबी मुनाफिकून अस्तगफिरुल्लाह, और जो तुम्हारे आस पास के बादिया नशीन हैं इनमें मुनाफिक भी हैं। ये किसको कहा जा रहा है? नबी को बताया जा रहा है कि आला तरीन मरातब वाले अस्हाब के बाद अब निचली तरीन सतह के लोगों की बात है कि नबी के करीब रहकर मुनाफ़कत खानी, इसकी तो कोई बात समझ ही नहीं आती। और बताया इसलिए जा रहा है कि आप उनसे केयरफुल हो जाएं। वमिन अहलिल मदीना थी, और मदीना वालों में भी हैं, मरदू अलन निफाक, जो इन नफाक पर अड़ चुके हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके निफाक का मरज अब आखिरी मरहले पर पहुँच कर अब लाइलाज हो चुका है, और वो इस मरस के अंदर से अब शिफा याब होने का कोई इम्कान ही नहीं रखते। मुनाफ़कत के मरज के बहाने होते हैं। लिखिए 3 स्टेप्स लिखाऊंगी आपको मुनाफ़कत के, बहुत काम की बात है, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना कैंसर की स्टेज 1, स्टेज 2 और शायद स्टेज 4 को कहते हैं कि ये आखिरी दर्जा बनता है, ऐसे ही है ना। इसी तरह से याद रखिएगा कि मुनाफ़क़त के कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में क्या होता है। इब्तदा होती है बहानों से। नंबर वन, फर्स्ट स्टेप ऑफ निफाक, झूठे बहाने। झूठे बहाने निफाक के मर्ज की इब्तदा है। बात बात पे झूठी कस्में खाना दूसरी स्टेज है, और जब आखिरी और तीसरी स्टेज पे पहुंचता है तो अहले ईमान के साथ ज़िद और दुश्मनी की सूरत में साबित होता है। ईमान वाले दीन के सारे मुतालबात खुशी खुशी पूरे करते हैं। जिस मुहिम से बचने के लिए मुनाफिकीन बहाने तराश रहे होते हैं, ईमान वाले बग़ैर हिलो हिजत के दिल की खुशी से कबूल होते हैं। मोमिनीन सच्चे जो होते हैं ना, उनका ये रवैया मुनाफिकों के लिए कज़ाब से कम नहीं होता, क्योंकि हर दिन उनकी बेइज्जती हो रही है, सबकी हो रही है, आए दिन इनकी मुनाफिकत का पोल खुलता है। यही वजह है कि मुनाफिकों को फिर सच्चे मुसलमानों से नफरत और अदावत होता है। आप देखिए, एक बंदा बहुत नेकी करता है, हर नेकी में आगे है, हर जगह उसका नाम है, वो तो खुश है ना। कुछ लोग उससे तकाबुल में आ जाते हैं, वो उसी शख्स को अपने निफाक की वजह बनाते हैं कि ये क्यों हर चीज़ में आगे आते हैं। चूँकि ये यस कह देते हैं, फिर हमें भी कहना पड़ता है। ये अंदाज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तालमुहुम, आप इन्हें नहीं जानते, नहनु नालमुहुम, हम इन्हें जानते हैं। इससे क्या पता चलता है कि नबी को भी गैब नहीं पता था जब तक अल्लाह कोई बात ना बताए। करेंगे क्या? सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम इन्हें दोहरा अज़ाब देंगे। ये कौन सा अज़ाब है जी? ये भी नोट करने की चीज़ है। मदीना के मुनाफिक हर रोज़ नए अज़ाब से गुज़रते थे। क्यों? हर रोज़ कहीं ना कहीं अल्लाह की राह में निकलने का मुतालबा, हर रोज़ दीन का कोई तकाजा, कभी एक मुल्क का, कभी दूसरे मुल्क का, कभी एक शहर का, कभी दूसरे का। हर रोज़ इन्हें झूठी कस्में खा खा कर झूठे बहाने बना के जान छुड़ानी पड़ती। तो इनकी ज़िंदगी मुसलसल अजाब वाली थी। यानी मुनाफिक की पूरी ज़िंदगी अजाब में गुजरती है कि क्या मुसीबत है। वो कहते हैं बंद करो इसको, वो कहते हैं ना कि हमें नहीं मिली तो तुम्हें भी ना मिले। लेकिन असल अजाब कब होगा? सुम्मा युरद्दून इला अजाब नज़ीम, फिर वो लौटा दिए जाएंगे एक बहुत बड़े अजाब की तरफ। दुनिया का अजाब जितना भी हो, आखरत के अजाब के मुकाबले में कुछ नहीं। तो दुनिया के अजाब झीलते झीलते एक दिन एक बड़े अजाब से सामना होगा इनका। आप देखिए, दो एक्सट्रीम्स है ना, एक तरफ साबिकून अलवलून और इत्तबाउम बेहसान, और अब मुनाफिकीन। दो ब्रैकेट्स हैं, अलग अलग दर्जों में इनका जिक्र है। अब यहाँ से एक तीसरा गिरोह, आपको इंशाल्लाह कल के सबक से पहले दोबारा दोहराऊंगी, वो 7 किस्म के गिरोह के लोग जो हमने सूरत के इब्तिदा में भी देखे थे। अब आगे जो गिरोह है ना, थे मुखलिस मगर हिम्मत की कमी थी। चलना भी चाहते थे मगर चल नहीं पाते थे, किस कदर भी चलते थे मगर कमी रह ही जाती थी। यही कुरान का हुस्न है। हर गिरोह में बंदा अपने आप को समझता, हिम्मत करके आगे बढ़ते फिर सुस्ती तारी हो जाती, फिर आगे जाते थोड़े आगे चुस्त होते फिर सुस्त हो जाते, फिर वक्त पे आते फिर पीछे होने लग जाते, फिर रहने जाते एंड पे फिर जल्दी चल पड़ते, है ना, फिर छुट्टी करते। आइए पढ़ते हैं आयत 102। रियली मैं कहती हूँ, सहाबा का हर एंगल खूबसूरत है। वाखरूना, और कुछ दूसरे भी हैं, वन मोर कैटेगरी, ए तरफ हो बिजनूबिहिम, जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। यानी कमी कोताहियों को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलते, झूठी कस्में नहीं खाते, झूठे बहाने नहीं बनाते, खुलेआम एतराफ़ कर लेते हैं कि हमसे गलती हो गई। ज़िंदगी के मामूलात की मसरूफियात और घर बार बच्चों की मसरूफियात ने हमें इस कदर उलझाया कि हम दीनी फ़राइज़ की अदायगी में कोताही का इर्तकाब कर बैठे। जब गलती का ऐसा खुला एतराफ़ हो गया तो निफाक नहीं रहता इंशाल्लाह, बल्कि तौबा की मोहलत मिल जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी कैफियत, खलतु अमलन सालिहन व आखर सईया, उन्होंने अच्छे और बुरे आमाल को गुड मुड कर दिया। खिचड़ी पकी हुई है, कुछ नेकियां कुछ बदियां, अमल नेक भी करते हैं फिर गलतियां करते हैं, ईसार और कुर्बानियां भी करते हैं मगर दुनियादारी के झमेलों में फिर उलझ जाते हैं। क्या होगा इनका हाल? अस्सलाहु यतूब अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह इनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम वाला। आपको पता कि ये आयत किसके बारे में है? अबू लुबाबा और उनके चंद साथियों के बारे में। ان سے سستی اور دنیا داری کی مصروفیات کی وجہ سے کوتاہی ہوئی، غزوہ تبوک پر نہ جا سکے، مگر ان کو جلدی احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ چنانچہ احساس ندامت کے باعث جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرح آپ کے پاس جاتے، ملتے، کچھ کہتے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہہ دیا، یا تو اللہ کے نبی خود آئیں اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کھولیں اور ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کریں، نہیں تو ہم یہاں بندے بندے ہی ختم ہو جائیں گے، جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور آپ نے تشریف لا کر ان کو کھولا اور خوشخبری سنائی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور توبہ کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب۔ سورۃ نساء آیت 17 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب غلطی کا احساس جو ہو گیا تو قبول کیا، اور کہتے ہیں کچھ دن تک یہ بندے رہے، صرف نمازوں کے وقت پر، ضرورت زندگی کے لیے ان کی بیوی ان کو کھولتی، پھر اس کے بعد بن جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا میں نہیں کھول سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ اپنا معاملہ ڈال دیا۔ تو کچھ دن کے اس مرحلے کے بعد اللہ نے پھر ان کو معاف کیا، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں ستون ابی لبابہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ جو جگہ ہے ریاض الجنہ، تو اس کے قریب ایک ستون پہ لکھا ہوا ہے ستون ابی لبابہ، اس کے ساتھ باندھا تھا۔ میں سوچتی ہوں یہ کیسے ہوتا ہے، خود کو خود باندھنا۔ دیکھیے یہ بہت ہی پیارے درجے کی غلطی ہوتی ہے جس میں بندہ خود کو باندھ لے، عذر نہ باندھے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس پہ صحابی نے خود کو ڈھونڈا تھا، واقعہ آپ بھی سیوں بار سن چکے ہیں۔ قرآن پاک میں آیت پڑھتے ہیں کہ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، فی ہی ذکرکم، کہتے میرا ذکر کہاں ہے، ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نہیں، نیک لوگوں کا ذکر پڑھا نہیں سمجھ آیا، بہت ہی بروں کا سنا نہیں پڑھا، جب اس پہ آیت پہ کب پہچان گیا میں یہی ہوں، میں ہوں خلط و عملاً صالحاً وآخر سیجیا، اچھے طریقے سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کاش زمین پھٹے اور ہم اس میں دھنس جائیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلطی پہاڑ بڑی جیسی بڑی لگتی ہے۔ اور آپ کو پتہ کہ ابو لبابہ نے کیا کیا ہوا تھا، ذرا سے ان کی باتیں بھی سن لیں، بہت کم سنی ہوگی۔ بیت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، جنگ بدر، احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے، ان کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق قربانی ایثار سے روشن تھا، اور ان کے ساتھی بھی نیک تھے، لیکن غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، حالات کے دباؤ اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے، بغیر شرعی عذر کے۔ اللہ کو یہ بھی نہیں اچھا لگا، ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے کام کر لیے، اب ضروری ہے سارے میں ہی کروں، اس سے پتہ چلتا ہے پچھلے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے پھر جب ان کو نکالا اور ان کے لیے یہ سب کچھ معاملہ ہوا، تو کتنی ان کے لیے خوشی کی بات تھی۔ آج بھی اپنے لیے ہمیشہ اسی چیز کو رکھیں، غلطی ہو جاتی ہے کنفیس کر لیں، اڑے نہیں۔ غلطی کر کے ڈرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کو لاتا ہے، غلطی کر کے اکڑنا اللہ کی مدد کو واپس لے جاتا ہے، اور گناہوں پہ دلیری ملتی ہے، اور عصا کا لفظ بتا رہا ہے امید ہے، ہوپ فلی، لیکن جب اللہ کی طرف عصا کا لفظ آئے تو اس سے مراد یقین ہوتا ہے کہ اللہ یقیناً ان کو معاف کرے گا۔ اب کریں کیا؟ آپ دیکھیں نا، غلطی ہوئی، آپ کی غلطی سے اسکول کا نقصان ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ گلٹ۔ تو گلٹ دور کرنے کا طریقہ، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقًا صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقات قبول کیجئے، اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک بھی کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان ساتھیوں کی توبہ جب قبول ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کچھ صدقہ دیا توبہ کی قبولیت کے شکرانے پر، چونکہ مخلص تھے، مومن تھے، سستی اور کمزوری تو آئی گئی تھی لیکن ٹھہری نہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان کی قبول کیجئے، جبکہ منافقین کے صدقات کو قبول نہیں کیا گیا۔ کعب صلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اس سے پتہ چلتا ہے جب کوئی ساتھی پیچھے رہ جائے تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا مورائل بلند ہو۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون بخشا، اللہ کے نبی کی دعا آپ کو اطمینان دے گی، ان کو تسلی دے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں لینی چاہیے، بعض غلطیوں اور گناہوں کے گلٹ سے بندہ صرف دعاؤں کے ساتھ نکلتا ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساری باتوں کی خبر ہے۔ तो क्या पता चला कि इन साथियों की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया। बागया तौबा पे एक जनरल दुआ आते हैं, अलम या आलमू, क्या नहीं जाना उन्होंने, अन्नल्लाह हुआ यकबलु तौबता अन इबादिही, कि बेशक अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, व याखुज़ु सदक़ात, और इनके सदक़ात को कबूलियत फरमाता है। कितना प्यारा अंदाज़ है कि वो तवाब है, अल्लाह ताला बंदे के तौबा को कबूल करता है। वन अल्लाह हुव तवाब रहीम, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। करो क्या, वकोले मालू, बस अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, पीछे गुजरी है इसे मिलती हुई आयत, थोड़ा सा फ़र्क है देखिएगा। और आप इनसे कह दीजिए कि तुम अमल करो, अब अल्लाह और इसका रसूल और अहले ईमान तुम्हारे अमल को देखेंगे। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि लोग कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल हमारे अमल देखता है, तो फिर इस आयत में तो मोमिन भी देखते हैं, तो फिर मोमिन भी हाजिर नाजिर हैं। बाज़ लोग इस आयत पर अल्लाह के नबी को हाजिर और नाजिर कहते हैं, जो पीछे गुजरी है, तो फिर यहाँ सारे मोमिन हाजिर नाजिर हैं। आपको इस वक्त भी पता है पाकिस्तान में क्या गुनाह कर रहा है, कोई या नेकी कर रहा है। सुभान अल्लाह, कैसे इंसान देखे बात को तोड़ मोड़ लेता है। क्या पता चला, अब मेहनत करो, अब जान दो, अब वक्त लगाओ, अभी भी कोई बादी मैदान खुला है। याद रखे अल्लाह के रास्ते के काम कभी ख़त्म नहीं होते, ये जो दोबारा नए मौके आते हैं ना, ये हमें मौका दे रहे होते हैं कि पिछली दफ़ा सुस्त हो गए थे, इस दफ़ा ठीक हो जाओ। दीन के मुतालबों के बारे में हर वक्त अल्लाह बंदे का रवैया देखता है। वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबी वश्शहादा, और अन करीब तुम्हें लौटा दिया जाएगा उसकी तरफ जो हर गायब और हाजिर का जानने वाला है। फयुनब्बिहुकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे हो। क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है, सारे किए धरे सामने, सारे अमाल सामने, वही बात। फ़मैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा और शर्रन यरा, सूरह ज़िलज़ाल 7-8। एक आखिरी गिरोह, वाखरूना मुरजऊन अली अम्रिल्लाह, और कुछ दूसरे लोग हैं जिनके मामले को क्या हुआ, अल्लाह ने मौखर कर दिया है। इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम, चाहे तो उन्हें अजाब दे और चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। ये तीसरी किस्म थी, ये वो लोग जो पीछे रहे थे उनकी बात है। काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, चूँकि इनका जिक्र अब आगे आ रहा है, एक और आयत में सारी कहानी वहाँ पढ़ेंगे। तो जो काब बिन मालिक है ना, वो ये कहानी सुनाते हैं अपनी तफसील से, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ सुनाऊँगी जहाँ ये वाक्य आएगा। लेकिन यहाँ ये पता चल गया आज के सबक से आपको कि पीछे रहने वाले सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ पीछे रहने की परवाह भी नहीं करते, कुछ पीछे रहते हैं तो केयरफुल होते हैं, कुछ होते हैं केयरफुल हो जाते हैं, कुछ झूठे उजर कोई कुछ, और कुछ ऐसे हैं जो शर्मिंदगी के साथ वापस आ जाते हैं। तो सच्चे मोमिन दीन से पीछे रहे सुस्ती की वजह से, लेकिन फिर जब अल्लाह ने चाहा उनके लिए रास्ते खोलने, तो वो आ गए और दाखिल हो गए। तो क्या पता चला, ये मुख्तलिफ़ किस्में पढ़ी हैं हमने, कई मुरजून है। दोहरा दूंगी इंशाल्लाह कल के सबक से पहले, या जहाँ इनका जिक्र आएगा, या मैं भी सूरत के एंड पे। लेकिन ख़ुलासा क्या निकला, आपके मेरे लिए ख़ुद को पहचानने के कई रास्ते हैं। कहाँ खड़ी हूँ, क्या है वाकई मैं अपने आप को असाबिकून अलव्वलून में लाने की कोशिशों में हूँ, अभी शायद मैं सिर्फ़ अपने आप को खलत अमलन सालेहन में महसूस करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला चाहेगा तो आगे मेरे लिए रास्ते खुल भी जाएंगे। क्या मैं मुरजून में से हूँ, ये देखे ना आपने, मुरजून रिजा से उम्मीद लगाए हुए। क्या मैं मरद वलन निफाक तो नहीं हूँ, इतने होशियार निफाक में कि दूसरों को पता ही नहीं चलता ये मुनाफिक हैं, ऐसे भी बड़े होते हैं चापलूस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं चलता था कुछ लोग किस तरीके से बातों में आपको खुश कर जाते थे। तो आज जाकर ना इस पूरे सबक में से मुख्तलिफ नामों को हाईलाइट करें और फिर चेक करें कि आप कहाँ खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे आपको हर तरह के निफाक से पाक करे और अपने आप को हम बेहतरीन तरीके से लेकर जाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم